मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज के मुख्य विषय के तहत मैं किस पर बात करने जा रहा हूं। आपने सही अनुमान लगाया होगा, आर्थिक सर्वेक्षण पर। मैं आर्थिक सर्वेक्षण पर कुछ बातें करूंगा। फिलहाल हम लोग जिस विषय की श्रृंखला पर बातचीत कर रहे थे उसे एक दो दिन के लिए विराम दे देते हैं, क्योंकि कल भी बजट पर बात करनी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। आज मैं एक दो जो दूसरी और भी खबरें हैं पहले वे आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि जो यूपीएससी आईएएस के जो मेंस के बाद इंटरव्यू होते हैं वे शुरू हो चुके हैं। अब मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप लोगों के लिए संभव हो सके तो प्लीज आप एक दिन धौलपुर हाउस के सामने जरूर बिताएं। शाहजहां रोड पर धौलपुर हाउस है, जहां यूपीएससी का दफ्तर है, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत ही प्यारा एरिया है। दोनों ओर बिल्कुल वृक्ष ही वृक्ष है, हरा हरा आपको दिखाई देगा, साफ सुथरी सड़कें हैं, अच्छा लगेगा आपको। खाने पीने की वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिल जाएगा पेट भरने के लिए, सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी। जाइए और पूरा दिन बिताइए। किस लिए बिताइए, मैं धौलपुर हाउस के दर्शन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब स्टूडेंट्स वहां से निकले इंटरव्यू दे करके, तो आप उनसे मिलिए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए, संकोच तोड़िए, हिचकचाइए मत, डरिए मत, बड़े प्यार से जाकर के नमस्ते कीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कि आपका इंटरव्यू हुआ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको सफलता प्राप्त हो। और फिर उनसे उनकी तैयारी के बारे में पूछिए, इंटरव्यू कैसा रहा, क्या क्या पूछा गया, इसके बारे में पूछिए। उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप उनसे जाकर के मिलेंगे तो उनको लगेगा ना कि भाई हाँ, थोड़ी देर के लिए तो हीरोइक फीलिंग आएगी उनको कि नहीं, मैं एक हीरो की तरह हूं। कि और वहां तो आपको बहुत से चैनल वाले मिलेंगे, बहुत से लोग माइक ले लेकर के घूमते रहते हैं और यूट्यूब पर डालते रहते हैं, आपको देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको। आप ऐसा जरूर करें, इससे आपकी तैयारी में आपको बहुत मदद मिलेगी। हो सकता है कि मेरी बात पर अभी आप उतना यकीन न कर सके, लेकिन ये मैं विश्वास करता हूं कि अगर एक बार आप ऐसा कर लेंगे तो आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। ट्राई करके देख लीजिए। एक मेरा व्यक्तिगत अनुरोध कि यदि आप जाते हैं तो प्लीज जो प्रश्न उनसे पूछे गए अगर आप वो मुझे बता सकें तो आप मेरी बहुत मदद करेंगे। और इनफैक्ट आप मेरी ही मदद नहीं करेंगे बल्कि मेरे माध्यम से मेरे जो प्रिय श्रोता हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद कर सकेंगे। मैं जब आप मुझे प्रश्न लिख करके भेजेंगे तो मैं बकायदे आपके नाम के साथ उनका उल्लेख यहां अपने डेली ऑडियो लेक्चर में करूंगा। प्लीज आप ऐसा करने के बारे में सोचें और उसे अंजाम भी दे दें। दोस्तों, अभी आपने एक नए उद्यान का नाम सुना होगा, अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, ये अमृत उद्यान क्या हो गया? दरअसल राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है उसका नाम है मुगल उद्यान। है नहीं कहना चाहिए, था मुगल गार्डन, उसका नाम था मुगल गार्डन ही था। मुगल उद्यान वैसे भले ही बोल दे लेकिन फेमस था मुगल गार्डन। जब मैंने अमृत उद्यान पढ़ा तो मुझे वो पुराने समय याद के दिन याद आ गए जबकि शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे और हम लोग उस मुगल गार्डन में बैठ करके खासकर गर्मी के दिनों में शाम के समय वहीं पर डिस्कस किया करते थे महत्वपूर्ण मुद्दों पर। मुगल गार्डन पार्टियां भी वहां होती हैं, खासकर जब बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं जैसे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर या गणतंत्र दिवस के दिन पार्टियां होती हैं, तो मुगल गार्डन बहुत ही खूबसूरत बड़ी प्यारी जगह है। अब उसका नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। ये बस आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए। दोस्तों, कल हमारे राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया, है ना। दरअसल एक प्रकार से संसद के संयुक्त अधिवेशन से ही संसद की बैठकें शुरू होती हैं और जो बजट सेशन से पहले जब बैठकों की शुरुआत होती है तो संयुक्त अधिवेशन होता है और उसमें उसे राष्ट्रपति जी संबोधित करती हैं। सामान्य भाषा में कहें तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं और खासकर जब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं तो उनकी शब्दावली होती है मेरी सरकार मेरी सरकार। देखिए, संवैधानिक रूप से जो सरकार है वो राष्ट्रपति की ही है। प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है वो तो उनको सलाह देने के लिए है ना, उनको सलाह देता, सरकार तो राष्ट्रपति की ही होती है। तो बकायदे राष्ट्रपति अपने संबोधन में ये कहते हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, ये किया, ये किया और आगे हम ये प्लान कर रहे हैं। मतलब पीछे जो उपलब्धियां हैं उनका लेखा जोखा होता है और आगे जो किया जाना है, जो देश अपेक्षा कर रहा है, जो सरकार सोच रही है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, भविष्य की योजना, उनका लेखा जोखा होता है। तो इसे सामान्य तौर पर एक बार पढ़ लेना ही पर्याप्त है तो आपके दिमाग में एक आप यूं कह लीजिए कि खाका सा बन जाता है सरकार के बारे में। और वहां से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स भी पकड़ में आ जाते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए, ये तो हर साल एक बार संयुक्त अधिवेशन होता ही है जिसे राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, लेकिन जब किसी बहुत बड़े मुद्दे पर दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जब अवरोध की स्थिति आ जाती है तो बकायदे हमारे संविधान में यह प्रोविजन किया गया है कि ऐसे समय पर जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकती हैं, आमंत्रित कर सकती हैं कि भाई दोनों आओ आपस में मिल बैठ करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करो, राइट। खासकर राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य का प्रयोग किया है, इस पर आप लोग विचार करें। उन्होंने इस तरह की बात कही कि जो भारत है पिछले कुछ सालों से वैश्विक मुद्दों का समाधानकर्ता के रूप में उभरा है, यानी कि विश्व की जो समस्याएं दिखाई देती हैं उन मुद्दों को सुलझाने वाला बनकर के सामने आया है। ये बात उन्होंने कही और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और बहुत सही बात कही है। तो आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट यानी विचार करने के लिए जो एक बिंदु मैं यहां उपलब्ध करा रहा हूं वो ये कि क्या आप उन वैश्विक मुद्दों की पहचान कर सकते हैं जिनके समाधानकर्ता के रूप में भारत सामने आया है, और लेटेस्ट अभी के बारे में बात कर रही है ना राष्ट्रपति, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, जरा इन पर आप सोचें। और आपको सोचना ही चाहिए, आप एक मुद्दा पकड़ सकेंगे, दो मुद्दा पकड़ सकेंगे, जितने भी पकड़ सके कोई बात नहीं, लेकिन सोचने की कोशिश तो कीजिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग सोचने वाला दिमाग बने, केवल रटने वाला नहीं। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, आर्थिक सर्वेक्षण। दोस्तों पहली बात तो यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है, और जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनके नेतृत्व में ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। अभी जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं नाम आप जानते हैं, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। आर्थिक सर्वेक्षण ये क्या है बेसिकली, शब्द से ही अर्थ बहुत स्पष्ट है कि पिछले एक साल जो अर्थव्यवस्था के रहे लगभग उनका सर्वे, कैसी रही हमारी एक साल की यह आर्थिक यात्रा, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। और याद रखिए कि पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो वित्त मंत्री को ही होता है, ये नहीं होना चाहिए कि मुख्य आर्थिक सलाहकार जाकर के उसे प्रस्तुत कर देंगे, नॉट एट ऑल, वित्त मंत्री ही आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण के अगले ही दिन बजट पेश कर दिया जाता है, आज बजट पेश किया जा रहा है, राइट। तो आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से लेखा जोखा होता है और कहीं ना कहीं उसमें बजट की छवि दिखाई देने लगती है, थोड़ी बहुत जानकारी मिली जाती है कि किस तरह का बजट आने वाला होगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में उन चुनौतियों की भी चर्चा होती है जो आगे चल करके आने वाली है। और कई बजट सर्वेक्षण में तो ये देखा गया कि बकायदे सरकार को सलाह भी दी जाती है कि आप ऐसा ऐसा करें, ये कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये कि आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी आया है उसको लेकर के बहुत परेशान न हो, और यहां तक कि जो बजट भी आ रहा है उसको लेकर के बहुत परेशान न हो। बजट के बारे में एक निर्देश मैं देना चाहूंगा कि बजट आज आ जाएगा, आपको कल सुबह अखबारों में बजट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। प्लीज आज आप जो दूरदर्शन की न्यूज है उसे जरूर देखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया जाएगा, सामने लाया जाएगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद बकायदे इस विषय पर बातचीत होगी और उस बातचीत में जिन मुद्दों को उठाया जाएगा वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए मैंने कहा कि प्लीज आज के दूरदर्शन न्यूज आप जरूर देखें। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण में कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं कही गई है जिसे आप यूं कह लीजिए कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने, लेकिन एक दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि जो वृद्धि दर है हमारी, जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6-6.8% हो सकती है, अनुमान लगाया गया है, तो ठीक है चलिए एक अच्छी है। हालांकि ये कहा जाता है कि $5 trillion के लिए तो हमको 10% की वृद्धि दर चाहिए, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो ये है कि अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें उसकी जो वृद्धि दर रही है वो बहुत अच्छी रही है, नियर अबाउट 9% के आसपास रही है। लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 4% ही रहा है, जबकि कहा यह जा रहा है कि भारत को अगर 5 बिलियन का लक्ष्य हासिल करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। और दुर्भाग्य से कृषि और उससे जो संबंधित उद्योग हैं उसकी जो दर रही है 3.5% रही है। तो आप देखिए कि कृषि में चूंकि बढ़ोतरी बहुत कम होती है, हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है, तो ये बात थोड़ी सी चिंतित करती है। लेकिन अपने आप में 3.5% भी कम नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात कृषि क्षेत्र में ये सामने आई है कि जो निवेश है वो निवेश काफी बढ़ा है, 9.3%। सच पूछे तो कृषि क्षेत्र के बहुत कम वृद्धि दर का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि वहां निवेश नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ये कुछ बातें ही मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही हैं और मैं आपको इंश्योर करना चाहूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान ना हों, बहुत ज्यादा आपको इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है, आंकड़ों के जंजाल में न फंसे, क्योंकि कोई ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस भी नहीं दी गई है जिसे आप लेकर के कोई तैयारी कर सके। हाँ, एक बात जो सामान्य तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है और वो ये है कि सरकार ने जो अभी एक लॉजिस्टिक पॉलिसी घोषित की, पीएम गति शक्ति योजना शुरू की, इसकी वजह से जो पूंजीगत खर्च है वो बढ़ा और इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देश की आर्थिक विकास पर आया। तो स्वाभाविक है कि चूंकि पूंजीगत खर्च में आप वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वो जो पैसा खर्च होता है वो पब्लिक के हाथ में जाता है, उससे क्रय शक्ति बढ़ती है और इससे एक प्रकार की एनर्जी पैदा हो जाती है, पूरे के पूरे इकोनॉमी में एक गतिशीलता सी आ जाती है। मुझे लगता है दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वेक्षण की यही बातें अपने आप में सफिशियंट हैं। अगर और कोई नई बात सामने आई तो डेफिनेटली हम लोग आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, ब्रिजेश सोनी अहमदाबाद से, सत्येंद्र प्रयागराज से, रविकांत वर्मा झारखंड से, रोहितास गुर्जर जयपुर से, खुशबू प्रजापति जौनपुर से और रिंकल जाडा अहमदाबाद से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।